तदीय वांगमय। हिंदी में सतसैया पर इतना अधिक विचार हुआ और उसका ऐसा मंथन किया गया कि उसे लेकर पृथक वांगमय ही खड़ा हो गया। इसमें उसकी बहुत सी टीकाएं हैं। उनकी अन्य भाषाओं में पद्यात्मक भाषांतर हैं। कुंडलियां कवित एवं सवैयों में पल्लवित रूप हैं। तुलनात्मक आलोचनाएं हैं और फुटकर लेख हैं। टीकाएं पुरानी ब्रजभाषा के गद्य में भी हैं और आधुनिक खड़ी बोली में भी। एक टीका संस्कृत गद्य में भी है। कुछ टीकाएं ऐसी हैं जिसमें चमत्कार के लिए कहीं वैद्य परक अर्थ लगाया है तो कहीं शांत रस परक। टीकाओं में दोहों के विभिन्न क्रम भी हैं। सतसैया के निर्माण के बाद से ही उनकी टीकाएं होने लगी थी और 300 वर्षों से उस पर बराबर टीकाएं लिखी जा रही हैं। कुछ प्राचीन टीकाएं तो मिलती हैं, शेष अप्राप्त हैं। सतसैया का टीका लिखना भी काव्य मर्मज्ञता की कसौटी था। प्रत्येक युग में अच्छे से अच्छा साहित्यिक उसकी टीका लिखता पाया जाता है। एक इसी बात से बिहारी की महत्ता का पता चल जाता है। सुभीते के विचार से पहले हम सतसैया की टीकाओं की चर्चा करते हैं। इसकी सब टीकाएं गद्य में ही नहीं हुई हैं, कुछ पुरुषार्थियों ने पद्य में भी टीकाएं की हैं। दोहे की टीका दोहे में। सतसई की सबसे पहली गद्य टीका कृष्णलाल की है। इस टीका के अंत में यह दोहा है। संबत ग्रह शशि जलधि क्षेति छठ तिथि बासर चंद चैत मास पख कृष्णमय पूरन आनंद कंद। जो लाल चंद्रिका आदि चार पांच टीकाओं में सतसैया की समाप्ति का समय बतलाने वाला माना गया है, पर इसकी शिथिल रचना ही बिहारी किसी नहीं जान पड़ती। सतसैया की प्रामाणिक और अधिकतर टीकाओं में यह नहीं मिलता। इससे रत्नाकर जी का अनुमान है कि यह टीका की समाप्ति के समय का निर्देश करता है। बिहारी के पुत्र कृष्ण कवि का नाम भी जनश्रुति में प्रसिद्ध है। लोगों का कहना है कि उन कृष्ण कवि ने कवित्व सवैयों में सतसैया की टीका लिखी है। वे ही बिहारी के पुत्र थे, पर उनका समय 1780 के लगभग है और बिहारी के समय से दूर है, इसलिए रत्नाकर जी इन्हें ही बिहारी का पुत्र कहते हैं। इस दोहे के अनुसार उक्त टीका संबत 1719 में बनी थी। यह टीका जयपुरी मिश्रित ब्रजी में लिखी हुई है। इसके अंत में यह दोहा है। प्रथम देववाणी हुती पुनि नरवाणी कीन लाल बिहारी कृत कथा पढ़े सुहोए प्रवीण। लाल टीकाकार का नाम है, बिहारी लाल कवि का नाम नहीं, क्योंकि उसका नाम इसमें बराबर बिहारी दास लिखा है। दोहे के दो सुसंगत अर्थ लग सकते हैं। एक तो यह कि मुक्तक रचना वाले पहले संस्कृत में होती थी, फिर नरवाणी प्राकृत अपभ्रंश ब्रजी आदि में हुई। दूसरी सतसैया की टीका पहले संस्कृत में थी, अब मैं नरवाणी कोष्ठ में ब्रजी में इसे लिख रहा हूँ। यद्यपि सतसैया की एक संस्कृत गद्य टीका मिलती है, पर उक्त समय से पहले की नहीं। इस दोहे का यह अर्थ लेना कि सतसैया पहले संस्कृत में थी, पीछे ब्रजी में लिखी गई, और भी बेढंगी बात है। टीका में वक्ता बोधव्य का उल्लेख है और साधारण अर्थ दिया गया है, नायिका भेद का उल्लेख है। इसकी प्रतिलिप संबत 1820 की लिखी मिलती है। दूसरी टीका राजस्थान के मान कविया मान सिंह की मिलती है। इसका निर्माण काल संबत 1737 के लगभग अनुमित है। कहा जाता है कि टीकाकार हैं उदयपुर नरेश महाराणा राज सिंह के दरबारी कवि मान, जिन्होंने राजविलास नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, पर अब प्रमाणित हो चुका है कि राजविलास के कर्ता और सतसैया के टीकाकार भिन्न व्यक्ति हैं। इस टीका में सामान्य अर्थ दिया गया है, नायिका भेद का भी सामान्य उल्लेख है। इसकी एक प्रतिलिपि संबत 1772 में मिलती है, जिसके लिखने वाले कोई प्रताप विजय हैं। तीसरी मुख्य टीका अनवर चंद्रिका है। इसकी रचना संबत 1771 में शुभकरण और कमल नयन नामक दो कवियों ने मिलकर की है। यह टीका किन्हीं अनवर खां के लिए लिखी गई है। इसी से नाम अनवर चंद्रिका रखा गया। ये खां साहब दिल्ली के कोई सामंत जान पड़ते हैं, जो मुल्तान के रहने वाले कहे जाते हैं। अनवर चंद्रिका में 16 प्रकाश हैं, जिनमें से प्रथम में तो केवल आशयदाता का वंश वर्णन है। शेष 15 प्रकाशों में दोहे साहित्यिक क्रम से छांट कर रखे गए हैं। टीका में अर्थ न देकर काव्यांग की बातों पर ही विचार किया गया है। वक्ता साहित्यिक दृष्टि से बड़े महत्व के हैं। इस टीका में अर्थ की जो कमी थी उसे पन्ना के कर्ण कवि ने पूर्ण करके साहित्यिक चंद्रिका नाम की स्वतंत्र टीका संबत 1794 में लिखी। ध्वनि का विवाद इसमें अनवर चंद्रिका की ही पद्धति पर किंतु स्वच्छंद किया गया है। प्रकरणों का क्रम भी अनवर चंद्रिका से मिलता है। संबत 1794 में ही केशव के ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार कवि सूरत मिश्र ने इस पर अमर चंद्रिका नाम की टीका लिखी। यह जोधपुर के तत्कालीन महाराजा अभय सिंह के मंत्री भंडारी नाडूला अमरचंद के अनुरोध से लिखी गई। इसी से अमर चंद्रिका नाम रखा गया। अलंकारों का निरूपण पंडिताई से किया गया है। अनवर चंद्रिका से इसका मत प्रायः भिन्न है। सारी टीका दोहों में है। टीका का नमूना देखिए। पारे सोर सुहाग को इन बिनही पियने उन दौही अखियाँ ककय कय अलसों ही देह। प्रश्न, बिन प्रिय सुहार को सोर न केहूँ हो। उत्तर, निज सखी बच देठ न लगे हित पय कहत सुजोय। पर्यायिक तिलक्षण छल कर साधिय इष्ट अहूँ पर्यायोक्ति सुनाम को न टोकय दुष्ट यह छल बच कह किय काम। काशीराज महाराज बम्बीर सिंह के महाकवि श्री रघुनाथ बंदीजन ने भी एक टीका संबत 1802 में लिखी थी जो नहीं मिलती। संबत 1809 में ईस्वी में दृश्यचंद्रिका नामक टीका लिखी। इसमें दोहे अकारादि क्रम से रखे गए हैं। अलंकारों का निर्णय भी औरों से भिन्न है। अलंकारों का विचार बहुत कुछ दोहे के अर्थ पर आश्रित रहता है। अर्थ इन्होंने औरों से भिन्न किया। टीकाकार अच्छे साहित्य मर्मज्ञ जान पड़ते हैं। अर्थ खोलने का ढंग और भाषा दोनों ही सीधे और साफ हैं। इसमें नायिका वक्ता बोधव्य अर्थ अलंकार दिए गए हैं। संबत 1834 में हरिचरण दास ने हरि प्रकाश नामक प्रसिद्ध टीका लिखी है। ये हरि कवि के नाम से कविता भी करते हैं। इनके नाम में सूर्य शब्द मिलता है जिससे जैन मतावलंबी जान पड़ते हैं। इन्होंने ही सभा प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। टीका सरल भाषा में लिखी गई है। शब्दार्थ और भावार्थ अच्छे ढंग से समझाए गए हैं। अलंकार निर्देश भी है पर कहीं कहीं शब्दों के टुकड़े कर डाले गए हैं और खींचतान से अर्थ किया गया है। पुस्तक भारत जीवन प्रेस काशी से छपी थी। इनके अतिरिक्त बिहारी पर कितने ही लेख अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी समय समय पर निकलते रहे हैं पर इनमें विशेष रूप से उल्लेख योग्य कोई नहीं। अधिकांश में या तो किसी दोहे की गुत्थी सुलझाई अथवा उलझाई गई है या मुग्ध भाव से बिहारी की गुणावली गाई गई है। जागरण के एक लेख में बिहारी के ग्राम्य वर्णन पर कुछ अच्छा विचार किया गया है। बिहारी की बहुत संक्षिप्त पर प्रौढ़ एवं तात्विक आलोचना पंडित रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलती है।